नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हागै नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मंदिर का पुनर्निर्माण। श्रोताओं, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
की करें प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की दया से आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवार के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से हग्गै नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि किस प्रकार इसराइली परमेश्वर के भवन को बनाने से इनकार कर रहे थे, अर्थात कह रहे थे कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठकर एक साथ कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जब आपके वचन में से सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हर एक से बोलने और बातचीत करने पाए, हर एक जन समझने पाए कि आप सामर्थी हैं, आप जीवित हैं, आपका वचन सत्य है। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की आप सहायता करें ताकि वे आप में बढ़ने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि कठिनाइयों के कारण इसराइलियों ने मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य रोक दिया था। उनका कहना था कि परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि वे मंदिर का पुनर्निर्माण करें। अतः परमेश्वर उनसे कहता है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन अर्थात परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर कहता है, अपने चाल चलन को निहारो, देखो और देखो कि तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है, तुम्हें वास्तव में हर बात की घटी है। अतः परिश्रम करके मेरे भवन को बनाओ तो मैं प्रसन्न होऊंगा, भवन निर्माण से मेरी महिमा होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए आज देखते हैं चाल चलन पर ध्यान देने की पुकार। अब परमेश्वर उनके दैनिक जीवन पर ध्यान देने की चर्चा करता है। हग्गै एक अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, 1-5 में, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। तुम क्या करते हो जरा सोचो। अब वह एक एक बात का उजागर करता है। आगे हम पढ़ेंगे हग्गै 1:6-7 में लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर उन्हें उनके भौतिकवाद का दंड दे रहा था, परंतु वे उसके दंड को नहीं पहचान रहे थे। इब्रानियों के पत्री 12:7 में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सहलो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना परमेश्वर अर्थात पिता नहीं करता। जी हां, परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, तो उसके पीछे भी एक कारण है। हमें अपने आप को जांच कर देखना है कि परमेश्वर हमारी ताड़ना क्यों करता है। वह हमें कोमल बनाना चाहता है। इसराइल में सूखा पड़ गया था, फसल मर गई थी, भोजन वस्त्र के लिए पैसा कम पड़ रहा था, परंतु उन्होंने इसे अपनी अवज्ञा से नहीं जोड़ा। आज हम कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। जी नहीं, परेशानियों के पीछे एक उद्देश्य है। परमेश्वर निरुद्देश्य कुछ भी नहीं होने देता है। परमेश्वर आपके मन में और जीवन में कोई महत्वपूर्ण बात रोपित करना चाहता है। अतः वह कहता है, अपने चाल चलन पर ध्यान दो। मनुष्य को अपने मार्ग सही प्रतीत होते हैं। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और यशाया नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सब के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। मेरे प्रियो, यही तो हमारी समस्या है। हम अपने अपने मार्ग पर ही चलना चाहते हैं। भजन संहिता 1:6 में लिखा है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर का वचन कैसे मनुष्य के मार्ग को प्रकट करता है जो परमेश्वर के मार्गों के विरुद्ध है। यशाया 55:7 में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। नीति वचन 13:15 में वह कहता है, विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है, निश्चय ही उनका मार्ग कड़ा होता है। यशाया में परमेश्वर कहता है, यशाया नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और यर्मिया नबी भी कहता है 10 अध्याय के 23 पद में, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। और तब यर्मिया 6 अध्याय के 16 पद में लिखा है, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। मनुष्य परमेश्वर का विद्रोही है। यर्मिया 10:2 में लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। और यशाया 30:21 में परमेश्वर कहता है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यूहन्ना 10:1-2 पद में प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। और आगे पद 9 में वह कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे प्रियो, यह कैसी महान बात है। परमेश्वर अपनी प्रजा से यही तो कहता है। वह चाहता है कि वे अपना चाल चलन सुधारें, अपना चाल चलन देखें। वह कहता है, ध्यान देकर देखो कि तुम्हें क्या हो रहा है। मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप किस मार्ग पर हैं? वह मार्ग आपको कहां ले जा रहा है? यह चौड़ा रास्ता है जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकते हैं, परंतु आगे चलकर वह इतना सकरा हो जाएगा कि जीवन नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर कहता है कि आपको जीवन में ले चलने वाला मार्ग प्रभु यीशु है। वह कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। वह सकरा तो है, परंतु परमेश्वर पिता के पास ले चलता है। वह आगे चलकर आने जाने के लिए बहुत चौड़ा हो जाता है और वहां हरी हरी चारागाह है, वहां बहुतायत का जीवन है। मेरे मित्रों, अब समय आ गया है कि आप अपने मार्ग पर ध्यान दें कि आप कहां जा रहे हैं, आपका विवाहित जीवन कैसे चल रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन में लक्ष्य क्या है? यदि आप एक युवक या युवती हैं तो आपका किस युवक के साथ कहां जाना हो रहा है? आपका भविष्य क्या होगा? आप अपने मार्ग को परखें, आप अपने जीवन को जांचें। मुझे हर प्रकार के मनुष्यों से पत्र प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ सही मार्ग पर हैं, परंतु कुछ गलत मार्ग पर हैं, और उनका व्यक्तिगत जीवन, विवाहित जीवन ध्वंस हो गया है। परमेश्वर कहता है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। मेरे मित्रों, आगे हम देखते हैं मंदिर के पुनः निर्माण का आदेश। परमेश्वर इसराइल के समस्याओं का समाधान सुझाता है जो इतना आसान है कि आप सोचेंगे इसमें बल देने की क्या आवश्यकता है। परमेश्वर उन्हें मंदिर के पुनः निर्माण का आदेश देता है और उन्हें तीन कार्य बताता है। इसराइल की रुचियों में अंतर आ गया था। उन्होंने परमेश्वर के भवन से बढ़कर अपने गृह निर्माण को महत्व दिया था। वे परमेश्वर की सेवा से अधिक अपने स्वार्थ को स्थान दे रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 33 पद में प्रभु यीशु का पर्वतीय उपदेश है, जिसमें वह कहता है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, उसकी धार्मिकता की खोज करना है। उसकी धार्मिकता प्रभु यीशु में है। आपके पास प्रभु यीशु है तो आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको लालसा है। पैसा भी आत्मिक होता है, यदि आप उसका अनुकूल उपयोग करें तब। आपका परिवार भी आत्मिक हो सकता है यदि वहां परमेश्वर का सम्मान किया जाता है, जहां प्रभु यीशु की गवाही है। और मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मित्र आकर शांति पाते हैं। वहां बाइबल अध्ययन भी होता है। आपका परिवार आराधनालय के समान पवित्र हो सकता है। भौतिक वस्तुओं की लालसा करना अनुचित नहीं है, परंतु उन्हें परमेश्वर से बड़ा बनाना और स्वार्थ में काम में लेना उचित नहीं है। अब परमेश्वर उन लोगों से कहता है कि उन्हें क्या करना होगा। हगय 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। समाधान अति सरल है। उन्हें बस तीन काम करने थे। पहला, पहाड़ पर चढ़ जाओ, और दूसरा, लकड़ी ले आओ, और तीसरा, इस भवन को बनाओ। मैं सोचता हूं कि इसराइलियों ने पहले यह क्यों नहीं समझा। मनुष्य की आंखों में मैं आ जाए तो मनुष्य कुछ नहीं देख पाता है, वह अंधा हो जाता है। आसान बातें जटिल दिखाई देने लगती है और मनुष्य मनोवैज्ञानिक के पास जाकर उपचार खोजता है। परंतु मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर को उसका अपना स्थान दे देंगे तो वह सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने जीवन से मैं को अपने मार्ग से दूर करें। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ। आज आप यदि इसराइल जाएं तो चकित होंगे कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसी आज्ञा दी, क्योंकि वहां पेड़ दिखाई ही नहीं देते हैं। यद्यपि इसराइल वर्षों से वृक्षारोपण अभियान को चला रहा है और उन्होंने लाखों पेड़ लगा दिए हैं, परंतु पहाड़ आज भी उजाड़ दिखाई देते हैं। एक समय वह भी था जब इसराइल के पहाड़ हरे भरे थे, जैसा कि इस पद में विदित होता है। यदि पर्वतों पर पेड़ नहीं होते तो परमेश्वर उन्हें यह आदेश क्यों देता है? तो फिर वे पेड़ कहां गए? सन 70 में शत्रु ने अर्थात रोम ने यरूशलेम को तो ध्वंस किया और साथ ही साथ जंगल भी काट डाले। पहाड़ों पर चढ़ना और पेड़ काटना तथा उनसे निर्माण की लकड़ी तैयार करना और फिर उसे लेकर आना परिश्रम का काम था। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर के आदेशानुसार परिश्रम न करें तो बाइबल अध्ययन मात्र आपके काम नहीं आएगा। परमेश्वर को परिश्रम करना अच्छा लगता है। हगै की यह छोटी पुस्तक कार्य का सुसमाचार है। इस अद्भुत पुस्तक में पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनौती दी। वे स्वयं से धोखा कर रहे थे कि वे परमेश्वर की इच्छा में हैं, परंतु सच तो यह है कि वे आलसी थे और अपने इस दोष को छिपाने के लिए पवित्रता की उक्तियां काम में लेते थे, जैसे अभी सही समय नहीं है, शायद यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे अपने पांव पर खड़े हो जाएं और काम में लग जाएं और अपनी विषम परिस्थितियों और फसल की हानि को परमेश्वर का काम समझे, क्योंकि परमेश्वर उनकी आंखें खोलना चाहता था। अतः परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे अपना चाल चलन देखें और अपने मार्ग को परखें, और दूसरा कि वे अब काम पर लग जाएं, अपनी प्राथमिकता को वे पहचानें, अपने मार्ग को स्थिर करें और पहाड़ पर चढ़ जाएं कि लकड़ियां लाएं, क्योंकि लकड़ियां पहाड़ पर से स्वयं ही लुढ़क कर नहीं आ जाएंगी। आपको काम करना होगा। मेरे मित्रों, आज अनेक जन मसीही जीवन में चमत्कारों की आशा को थामना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, परंतु छोटा रास्ता संभव नहीं है। परमेश्वर की सेवा में हमें परिश्रम करना है। क्या इसराइलियों के लिए परमेश्वर चमत्कार करता तो उसने उन्हें काम करने को क्यों कहा? मेरे विचार में पवित्र आत्मा आलस्य को आशीषित नहीं करता है। आलस्य हमारे मसीही जीवन की चूक है और यही कारण है कि आज बहुत सारे मसीही परिवार अपने स्थान पर स्थिर पड़े हुए हैं। वे बढ़ते नहीं हैं किसी भी रूप में। मुझे याद है अपने बाइबल अध्ययन के समय में कि मेरे एक साथी ने हमारे प्राध्यापक से किसी पुस्तक की शिकायत की कि वह बड़ी नीरस है, तो उन्होंने कहा उसमें अपने पसीने का रस मिला दो। मेरे मित्रों, मसीही जीवन सोने की थाली में नहीं परोसा जाता है। चमत्कार आपके कामों पर निर्भर करता है। हगै के युग में परमेश्वर ने इसराइल से कहा कि वे परिश्रम करें। डॉक्टर फ्रैंक मॉर्गन कहते हैं, पहली बात बौद्धिक अनुभूति। जी हां, बौद्धिक अनुभूति है। परमेश्वर ने इसराइलियों से पूछा, तुम कहते हो कि परमेश्वर के भवन को बनाने का समय नहीं आया है, परंतु तुम अपने घर बनाकर रह रहे हो। परमेश्वर चाहता था कि उन्हें बौद्धिक अनुभूति हो। दूसरी बात देखते हैं, वह उनके मन में संवेदना उत्पन्न करना चाहता था। परमेश्वर ने उन्हें सोचने पर बाध्य किया, मन लगाने पर बाध्य किया, यद्यपि उन्होंने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने उन्हें चुनौती दी। तीसरी बात, डॉक्टर कहते हैं परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी जो उनकी इच्छा को कर्मठता में बदलती है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। यह सुनने में तो साधारण सी बात है, परंतु है बहुत ही महत्वपूर्ण। मेरे मित्रों, कमर कस लें और आज परमेश्वर के काम के लिए आप निकल पड़ें। आज के विश्वासी बैठकर किसी और को परमेश्वर का काम करते हुए देखना चाहते हैं, जैसे दर्शकगण बैठकर खेल देखते हैं। अनेक सेवक काम करते करते मर जाते हैं, उन्हें रोगियों को देखने जाना होता है, कलीसिया की व्यवस्था देखना होता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सब कार्य देखे और संभाले। कलीसिया के सदस्यों, क्या आप रोगियों से भेंट करने जाते हैं? पास्टर आपको सिखाएगा, पूरा कार्यभार वही नहीं उठाएगा, कार्यभार को आपस में बांटना चाहिए। यदि आप किसी कलीसिया के सदस्य हैं तो आपको काम करना आवश्यक है। आज हमारी कलीसियाओं में काम करने की बहुत ही आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आप किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार ना करें, आप भी प्रभु के संतान हैं तो आप अपने रोगी मित्रों के घर में जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी सहायता करें, चुपचाप बैठे ना रहें। परमेश्वर देखना चाहता है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज हम सब के लिए भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अपने चाल चलन पर सोचो, अपने चाल चलन पर विचार करो। क्या आज आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं या आप स्थिर हैं? निर्णय आपके हाथों में है। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज आप एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए लेंगे और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
आराधना।